તારીખ 4/5/1994 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 87. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
યોગ્યતા બળકર કે મોક્ષ માર્ગ પર યોગ પહોંચા હૈ સત્ર કા જો ખાસ વિષય હૈ ઇસ પ્રકાર હૈ શરૂ વિષય જો હૈ સંક્ષિપ્ત મેં લે લે કે જિસકો એક મોક્ષ કે લીએ પ્રયાસ કરના હૈ ભલે ભી સામાન્ય સંસારી પ્રાણી હૈ ફિર ભી ઉસકો ભાવ તો યે હોતા હૈ કે મેં હમેશા કે લીએ પૂરા સુખી હો જાઉં એક ક્ષણ ભી મુજે દુઃખ ન હો ઓર દુઃખ કી કમી ભી ન હો તો ઇતના बहुत बड़ा जिसका ध्येय है उसके अनुपात में उसकी तैयारी होगी तो एक क्षण भी एक पल भी नुकसान हो गए ऐसे बिगाड़ना चाहेगा नहीं और उसको अपना दोष देखने की दोष को निकालने के लिए दोष देखने के लिए आत्म जागृति पैदा हो जाएगी जिससे स्वच्छंद हानि को प्राप्त होगा। यहां तक आता है फिर भी मोक्ष मार्ग तक पहुंचने में तीन प्रकार के परिणाम है, दूषित परिणाम है कि मोक्ष मार्ग तक पहुंचने में अवरोध करता है, बाधक रूप होता है, प्रतिबंधक होता है, उसी की चर्चा कृपाल देव यहाँ कर रहे हैं। जबकि पत्र का विषय ही मुमुक्षुता का है तो ये मुमुक्षु के लिए वर्तमान में खास प्रयोजन होती है ये समझाने की जरूरत नहीं है। ये तीन प्रकार के परिणाम में पहले प्रकार के परिणाम की चर्चा कर रहे हैं आप लोक की अल्पनी सुखेच्छा जहां तक मनुष्य को रहती है वहां तक मोक्ष मार्ग में पहुंचने की इसकी योग्यता रुक जाती है। अभिप्राय क्या है ऐसा कहने में कि अनादि से जीव को पर पदार्थ में सुख बुद्धि है पर सुख बुद्धि होने से आधारित नहीं है। जबकि मोक्ष मार्ग आत्मस्वरूप के आधार से यानी अवलंबन से आता है तो अवलंबन दो प्रकार का हो सकता नहीं, रह सकता नहीं। स्वरूप का भी अवलंबन हो और पर पदार्थ का भी अवलंबन हो ऐसा नहीं बनता। पर पदार्थ का आधार अवलंबन रहे उसको स्वरूप का भी अवलंबन आ जाए ऐसा नहीं बनता। तो ये अल्प की सुखेच्छा में अभिप्राय वो रहता है कि सुख का कारण कहीं न कहीं उसको महसूस होता है, मालूम पड़ता है पर आधार बुद्धि छूटनी चाहिए वो नहीं छूटती है। बात बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से कृपाल देव कर रहे हैं, थोड़ा विशेष ध्यान से इसका अध्ययन करने योग्य है। थोड़ा सूक्ष्म पड़े तो जिज्ञासा बढ़ना लेकिन कंटाला में आना नहीं। ये तो बहुत सूक्ष्म बात चल रही है, हमारे हमारे लायक नहीं चल रही है, ये तो ऊंची ऊंची बात है। ऐसा करते ऊंची बात का विशेष आदर किया जाता है तब तो बात का स्थान ऊंचा रहता है। ऊंची बात कहकर के निषेध आता है तो ये बात ऊंचे स्थान में रहेगी भी नहीं। हो जाए, कहेंगे कि माफ उसी और करेंगे अनादर, ऐसी परिस्थिति है। तो ध्यान से अपने परिणामों को प्रकट करके समाज करके अवलोकन करके समझ में जो विषय सामने आया है, क्योंकि हमें हमारी योग्यता कैसे आगे बढ़े कि हम मोक्ष मार्ग तक पहुंचे, ये विषय है एजेंडा पर। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति, कैसी स्थिति, कि इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा रहा करे, यानी अनुकूलता हमें रहा करे, हमें ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन हमारी आदत है उतनी अनुकूलता रहनी चाहिए। क्या हमको उतना कम से कम चाहिए, सोने में तकिया उस प्रकार का चाहिए, अगर दूसरे प्रकार का आएगा तो नींद आएगी नहीं, उसको तो कोई लंबी छोड़ी बात नहीं है, फिर भी पूरे दिन तो घर में रहना होता नहीं, बाहर में जाना होता है, दूसरे के वहां भी जाना होता है, थोड़े भी अपने आदत के अनुकूल परिस्थिति नहीं बनती है, और शर्म घर में बोला भी नहीं जाता है, तो नींद आती नहीं है, तकलीफ पाते हैं, अल्प भी सुख इच्छा, थोड़ा सुख की भी इच्छा, अभिप्राय क्या है, ये दोष अभिप्राय का दिखा रहे हैं कृपाल कि इसके पीछे वो अभिप्राय है कि मेरी आधार वाली कोई चीज है वो दूसरी चीज है, मेरा स्वरूप नहीं है, तो ये बहुत आता है स्वयं के महाप्राप्त महान स्वरूप का आधार नहीं देखे, यानी यहां लगे सर्वदार्थ का पुद्गल का राग का आदर और आधार लेकर के परिणमता है, तो यहां से अनंत दुख पनपता है, पूरी लाइन बदल जाती है। तो इतना छोटा सा टुकड़ा रख करके कृपालु देव यह कहना चाहते हैं कि तेरे आधार बुद्धि को तो देख, तेरे ये चारित्रों की बात नहीं कह रहे हैं, प्रश्न उठाया हमारे सामने कि ज्ञानी को भी थोड़ा अनुकूल थोड़ा प्रतिकूल ऐसा तो रहा ही करता है, ये नहीं अनुकूल आएगा वो नहीं खाएंगे वो खाएंगे, ये चलेगा वो नहीं चलेगा वो, तो वो भी करते हैं, प्रत्यक्ष दिखने में आता है, हाँ करते हैं ना करते हैं, क्यों ना करते हैं, अनुकूल प्रतिकूल है तब तो, कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने तो अपने आप में स्वयं में अपना अवलंबन लिया है, और थोड़ी अल्प अस्थिरता बस ये हो रहा है, लेकिन अपने में अपनी पकड़ में रह करके बाहर आते हैं, पूरे के पूरे बाहर नहीं आते हैं ज्ञानी की तरह, तो यहां पर जो कभी भीतर में आया ही नहीं उसको तो एक दफे पूरा का पूरा अवलंबन छोड़ देना चाहिएगा, स्वयं का अवलंबन आएगा तब मोक्ष मार्ग चालू होगा, फिर अशक्ति को तोड़नी है। तो कहते हैं कि तीव्र मोक्षता माने ज्ञानी दशा, ज्ञान दशा के पहले प्राय ऐसी स्थिति होती है यानी हो सकती है, ये दोष मोक्ष की भूमिका का है लेकिन टालने योग्य है, भूमिका का है इसलिए रखने योग्य है, ये दोष के पक्ष में आने वाला तो ससंद में ही चलता है, यहाँ तो निष्पक्ष रूप बात से दोष को देखने की बात आगे चल गई है, जब इस ससंद में टाल है। तो कहते हैं कि ज्ञान दशा से पहले ज्ञान दशा की उत्पत्ति नहीं हो वहां तक प्राय ऐसा होता है, और इसके होने का कारण भी यह है कि आत्मा सत परमानंद रूप है ऐसा निशंक निश्चय नहीं हुआ है, जो पदार्थ निर्णय से या स्वरूप प्रतिभाषण से होता है, स्वरूप निश्चय से होता है, ऐसा नहीं हुआ है, उल्टा निश्चय पड़ा है, उल्टा निश्चय पड़ा है तो उल्टा अभिप्राय भी पड़ा है निश्चय के साथ, सुख है कहीं न कहीं सुख है, किसी न किसी पदार्थ में सुख है, ऐसा जो निश्चय है
तो सही निश्चय को आने नहीं देता, दो विरुद्ध निश्चय तो रहता नहीं, खाना भी है और नहीं भी खाना है, दो निश्चय हो सकता है क्या? खाना है तो खाना है, नहीं खाने का निश्चय टूट जाता है, नहीं खाना है तो खाने का निश्चय टूटता है। तो आत्मा जो सत परमानंद रूप है, ऐसा भाव भाषण पूर्वक निश्चय नहीं आया है तो कहीं न कहीं ऐसी सुखेच्छा रह जाती है, रहा करती है। तो उसमें क्या होता है कि मुमुक्षुता तो है, मुमुक्षुता नहीं है इसकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुमुक्षुता में भी कितने ही आनंद का अनुभव होता है। मैंने साता में ठीक पड़ा लगता है, ऐसा भी होता है, थोड़ी अनुकूलता मिलती है तो अनुकूलता ठीक लगती है, प्रतिकूलता ठीक लगती है, ऐसा थोड़ा थोड़ा आधार पूर्वक चालू है, वो मोक्ष मार्ग तक पहुंचने की योग्यता को रोकने वाला कारण है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने परिणाम को चेक करे, तलाश करे, ऐसा तो हो तो नहीं रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो पदार्थ का निर्णय भी नहीं होगा और मोक्ष मार्ग भी पहुंचने वाला नहीं होगा। आनंद का अनुभव होता है जिससे बाह्य साता के कारण भी कितनी ही बार, एक बार नहीं कितनी ही बार प्रिय लगते हैं। मोक्ष को ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्यों लगता है? आश्चर्य चिन्ह कर रखा है आश्चर्य चिन्ह ब्रैकेट में रख दिया, ऐसा क्यों लगता है? तुम मोक्ष हो, तुम्हें तो इष्ट अनिष्ट मिटाने का प्रयास के पीछे लग जाना चाहिए, जबकि सारे जगत के प्राणी इष्ट अनिष्ट में के चक्कर में पड़े हैं, तो तेरा प्रयास तो इस चक्कर में से छूटने के लिए सतत चलना चाहिए। फिर क्यों ऐसा होता है? ये आश्चर्य लगता है, ऐसा होना चाहिए नहीं। और इससे इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, यानी आधार बुद्धि टूटती नहीं है, कुछ साता में ठीक पड़ा होता है, असाता में अठीक पड़ा होता है। अरे प्रशंसा में ठीक पड़ा लगे तो भी एक मुमुक्षुता की मृत्यु है, और निंदा में अठीक पड़ा लगे तो भी वो प्रशंसा को चाहता है, जब भी उसको ठीक पड़ा लगता है, वरना तो निंदा प्रशंसा का प्रवेश ही नहीं है अपने में, बहुत दूर की चीज है वो तो। लेकिन मेरा संदर्भ में ये चल रहा है, निंदा वाला या प्रशंसा वाला प्रसंग, ये मुमुक्षुता को खत्म करता है। इससे लेकर के कोई भी प्रकार का अनुकूल प्रतिकूलता के विषय में, अनुकूल प्रतिकूल न हो न लगे इसका प्रयास चलना चाहिए, लगे तो ये बात खत्म हो जाएगी, ये प्रतिबंधक कारण है, मोक्ष मार्ग में रुकावट आ जाएगी, मोक्षता आगे बढ़ेगी नहीं, पात्रता विकसित होगी नहीं। तो पात्रता विकसित नहीं होगी तो क्या होगा? परिणाम तो चाल है, दिशा दो ही है, या तो आगे बढ़ो या तो पीछे जाओ, पीछे जाना हो जाएगा। ये बात कल भी थोड़ी चली थी। अब दूसरे कारण को कहते हैं कि परम विनय की कमी है, ये भी एक दोष है। थोड़ा विनय है ये गुण है ऐसा नहीं कह करके उसमें जो कमी है वो अवगुण है, पर ये मोक्षता को रोकने वाले परिणाम है। किसके प्रति? सत्पुरुष के प्रति, सजीव मुक्ति के प्रति। परम विनय होना चाहिए, कितना परम विनय होना चाहिए के नमस्कार से लेकर के पराभक्ति के हद तक का विनय होना चाहिए, वो बात 225 नंबर के पत्र में कही है। गोपांगनाओं के दृष्टांत के माध्यम से कही है, देख लेना वहां से। यहाँ तो कहते हैं कि सतपुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। किसकी बात चल रही है? मुमुक्षु की बात चल रही है। मुमुक्षु का परम धर्म कौन सा? सबसे अच्छा धर्म कौन सा? परम में उत्कृष्ट धर्म कौन सा? कि सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि होना। या देखो, ज्ञानियों ने, मैं कहता हूं नहीं, सभी ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। क्या कहा है? बात थोड़ी बर्दाश्त नहीं हुए ऐसी है, क्योंकि आप जिनेंद्र की बात करो ना तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सत्पुरुष की बात में तो ये बात गले उतरती नहीं है। तो सामान्य संसारी जैसा दिखता हो, अरे चार गति में कहीं भी हो, तेरी इंच भी हो क्या, पर मनुष्य हो तो देर बंगी चमार भी हो सकता है। तो आता है रत्नकरंद श्रावकाचार के 28वीं गाथा में वो बात है कि जो चांडाल है, वहां चांडाल शब्द लिया है, चांडाल में तीनों जाति आ जाती है, देर भंडी चमार सब आता है, वो चांडाल कहा जाता है। अगर कोई चांडाल भी है लेकिन उसको स्वानुभव होता है तो गंधर्व देव उसको देव कहते हैं। ये गाथा का शब्दार्थ है, यहां से समझ लेना कि जब हमारे गुरु गंधर्व देव कौन है, आचार्य शिरोमणि को गंधर्व कहते हैं। आचार्य तो बहुत होते हैं, भगवान के साधु के संग में बहुत से आचार्य होते हैं, लेकिन गंधर्व देव तो आचार्य शिरोमणि है। तीर्थंकर के पीछे इसका नाम लिया जाता है, वो गणधर देव उसको देव कहते हैं। फिर हमारा तो कोई इससे कम कहने का अधिकार नहीं रहता है। ये सूत्र है हमारे आचार्य स्वामी समर्थ भद्राचार्य के, ये भी एक ऐसे हमारे समर्थ आचार्य हुए हैं, जैसे कुंदकुंद आचार्य हुए वैसे ही समर्थ हुए समर्थ भद्र स्वामी। उन्होंने अपनी रचना रत्नकरंद श्रावकाचार में आचारांग के प्रकरण में ये बात लिखी है। सम्यक दृष्टि तो अविरत सम्यक दृष्टि है, आचारांग के प्रकरण में इनकी बात कहां से बीच में आती है? आती है मुमुक्षु के लिए, ये बात आती है समझने के लिए। तो कहते हैं कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि नहीं होती, वहां तक परम विनय नहीं आता। परमेश्वर में ही परम विनय आता है, जहां तक सत्पुरुष कर्मजनित पर्याय रूप दिखता है वहां तक सत्पुरुष सत्पुरुष के रूप में नहीं दिखता है। और सत्पुरुष जब परमेश्वर के रूप में दिखता है तब ही सत्पुरुष का सही दर्शन होता है, इसके पहले इसका सही दर्शन नहीं होता है। हम तो मानते हैं कि ज्ञानी है, ऐसा नहीं चलता। और नहीं चलता तो क्या होता है कि मुमुक्षुता की पात्रता में एक बड़ा अवरोध पैदा होता है। ये अवरोध निकालने के लिए रूपानुदेव कृपा कर रहे हैं, है। ऐसी बात है, कई लोग ने ऐसा चढ़ा दिया था, तो बात ऐसी लगते हैं सत्पुरुष की, तो खुद को अपना मान सम्मान अपनी पूजा कराने के लिए तो कहीं नहीं किया हो। हाँ, ऐसा एक विपरीत विकल्प भी जीव को असरलता के वश आता है, सरलता में ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो मुमुक्षु के लिए लिख रहे हैं। और इसकी पात्रता रुक नहीं जाए इसलिए लिख रहे हैं। बुद्धि में बुद्धिमानों को नहीं समझ में आए तो क्या करें? ज्ञानियों ने, सभी ज्ञानियों ने कहा, तो कह रहे कि ज्ञानियों ने कहा, बहुवचन लिया, एक ज्ञानी नहीं कहते हैं, सभी ज्ञानियों ने कहा कि सर्व पुरुष में परमेश्वर बुद्धि ही मोक्ष का परम धर्म है। लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है, क्योंकि हमने करणानुयोग पढ़ा है और करणानुयोग में सत्पुरुष का जो स्टेटस है वो अविरत सम्यक दृष्टि वाला चतुर्थ गुण स्थान का होता है, और ये करणानुयोग में वो बात साफ है कि नहीं है? क्या हम करणानुयोग का उल्लंघन करें? करे नहीं, तो ज्ञानियों ने कहा है, तुझे ज्ञानी की आज्ञा सम्मत है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ज्ञानी को मानता है ज्ञानी के रूप में, वो बात भी रहती नहीं है। लेकिन प्रश्न ये अवश्य है, ठोस प्रश्न है कि जब हमारी बुद्धि सम्मत नहीं करती हो तो हम क्या करें? क्या जब हमारी बुद्धि में ये बात सम्मत होती नहीं हो तो हम क्या करें? ये भी प्रश्न तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कहते हैं कि बुद्धि सम्मत नहीं करती हो तो उसको, इस बुद्धि को एक चमाट लगा देना, तो बैठ छाने माने क्या उसको बिठा देना, एक चमाट लगा देना। हाँ, कि तेरा डेढ़ा दापण कितना, 1 इंटीजर 1/2, हाँ, बहुत चला और मुझे संसार में घुमाया तूने बहुत स्वच्छंद कर करके, अब तो तू बैठ। हम तो वहां तक कहते थे, तो अंगड़ जाने का जब हमने शुरू किया तो हम ये कहते थे, हम गुरुदेव का बहुमान तो बहुत करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, मानते हैं, बहुत प्रभावक पुरुष थे, नहीं माने तो बेटा पैसा बने ही नहीं माने वाले के लिए। लेकिन वो ऐसा कहे कि ये जो गर्मी के दिन है, दोपहर को 12 बजे, ये सूर्य नहीं है, अरे सूर्य का चंद्र भी नहीं है तो अमावस्या की रात है, हाँ, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, हमारी बुद्धि तो ये कहेगी कि जिसका कोई स्क्रू ढीला हो गया हो ना, तब ऐसा बात करता हूँ, वरना इतनी गर्मी लगती है, सही गर्मी है और अमावस्या के रात, चंद्र भी नहीं, चंद्र तो ठंडा भी लगे, स्वप्न में बोलते हैं क्या? लेकिन ऐसा भी कभी कहे तो बुद्धि तो सम्मत करेगी नहीं, लेकिन बुद्धि को साइड ट्रैक में ले जाना है कि तुम बैठो, कि बुद्धि लगाने का विषय नहीं है, बुद्धि लगाने का विषय नहीं है तो क्या अंधश्रद्धा का विषय है? क्या चर्चा तो पूरी कर लेना, पूरी छानबीन करना, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाएगी। तो मैंने तुझे ज्ञानी, तुमने ज्ञानी माना कैसे? जब ये कैसी भी उल्टी सुलटी बात या झूठी बात या खोटी बात या विपरीत बात कहते हो तो ये ज्ञानी रहे कैसे, और तुमने माना भी कैसे? कैसे विश्वास किया है कि ज्ञानी है? किस आधार से विश्वास किया है कि ज्ञानी है? ज्ञानी मानने का आधार क्या? वहां बात तो वहां ले जानी है कि तुमने वाणी से माना है, उसकी पर्सनालिटी देख करके माना है, बहुत प्रभावक व्यक्तित्व है, हायर पर्सनालिटी दिखती है, सामान्य मनुष्य के ऐसे नहीं दिखती है, इतनी ऊंचाई है, उतने गोरे हैं, ये है वो है, या इनकी वाक छटा है, वाक चातुर्य है, वाक पटुता है, ऑरेटरी अच्छी है इसलिए माना है, क्या बात है? क्या सूक्ष्म बहुत है, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत शास्त्र में से बात कहते हैं, समझाते हैं, इसलिए माना है? कैसे माना है? मानने का आधार क्या है? बात वो है इधर। हाँ, सब कहते हैं इसलिए माना है, तो तेरे घर की तो बात रही नहीं, ये तो पराई पूंजी होगी। हाँ, सारे लोग कहते हैं, सारे समाज कहते हैं, पर हरेक हरेक संप्रदाय की मुख्यमंत्री के पीछे समाज तो होता ही है, तो तुम सबको क्यों नहीं मानते, इनको ही क्यों मानते हैं? हाँ, हरेक संप्रदाय के जो मुख्य बड़े बड़ा होता है, जो गद्दी पे बैठता है, उसके पीछे तो पूरी समाज इसकी होती है, तो सबको मान ले क्योंकि उसके सबके पीछे समाज है। ये कोई मानने का स्टैंडर्ड है क्या? हाँ हमारे हाँ, ये बात सही है। वीरेंद्र भाई को वही था, शांति भाई भी मानते थे और छगन दादा भी मानते थे। हाँ तो वीरेंद्र भाई ने मान लिया। हाँ लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का धंधा तो वो नहीं करते थे, छगन दादा करते थे क्या? नहीं करते थे, तो शांति भाई ने क्यों किया? हाँ मान ही लेते। हमारे पैसे का जो प्रयोजन है, क्या हमारे दादाजी बिस्कुट बांटते थे क्या? हाँ तो टोपी पहनते थे, हम क्यों खुले माथे फिरते हैं? तो धोती पहनते थे, हम क्यों पैंट बुशर्ट पहनते हैं? वहां तो हम कुछ नहीं अनुसरण करते, और यहाँ पर अगर ऐसा है तो ये अंधश्रद्धा नहीं है क्या? गुरु कहते हैं वो मान ले तो अंधश्रद्धा है, और बाप दादा कहते हैं वो मान ले तो अंधश्रद्धा नहीं है क्या? वो भी अंधश्रद्धा है और क्या है। कुल परंपरा से सही धर्म को मानने वाले भी मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं होते। प्रथम अधिकार में श्री तोड़रमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रसाद प्रकाशन में कहते हैं कि कुल परंपरा से सच्चा धर्म का, धर्म के क्रिया कांडों का अनुसरण करना, उसको तो धर्म बुद्धि है ही नहीं। जो समाज के बहाने या समाज के आधार से मानते हैं उसको समाज बुद्धि है, उसको धर्म बुद्धि नहीं है। ऐसा लिखा है उन्होंने, उसको तो धर्म बुद्धि ही नहीं है। जो सामाजिक कारण से धर्म का किसी भी परंपरा का अनुसरण करता है, कि लोग संज्ञा वाला धर्म बुद्धि के अभाव वाला है, उसको कभी सम्यक दर्शन होता नहीं है। ऐसा लिखा है टोटल मंदिर ने। यहाँ तो बात है कि पहचानने का कारण क्या है। दशा से ज्ञानी है, और ज्ञान दशा कैसी है कि जैसा स्वरूप है ऐसी स्वरूप सदृश परिणति वही ज्ञान दशा है। तो जिसने अपनी दशा में स्वरूप को प्रकट किया, उस स्वरूप को जिसने पहचाना, तो स्वरूप कैसा है कि जैसा जिनेंद्र परमात्मा है वैसा है। कोई फर्क है, अंतर है स्वरूप में क्या? आत्म स्वरूप में कुछ फर्क है। जिन पद निज पद एकता, इसलिए वह परमेश्वर का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, इसलिए परमेश्वर बुद्धि आती है। 143 गाथा में अमृतचंद्र आचार्य ने परमात्मा शब्द क्यों लिखा? पक्षांतिक्रांत होकर के जो स्वानुभव में आया, उसके लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया? इतना बड़ा विशेषण क्यों दे दिया? है तो अविरत सम्यक दृष्टि। क्या गुणस्थान का ज्ञान आचार्य महाराज को नहीं था क्या? कि पक्षांतिक्रांत होने के बाद चतुर्थ गुण स्थान में आते हैं, 13वें में कोई एक भी जीव नहीं आते। लेकिन परमात्मा कहने के पीछे संकेत है कि मुमुक्षु को परमेश्वर बुद्धि होनी चाहिए। जब ही परम विनय आता है, और ऐसा परम विनय आने से मुमुक्षु की उत्कृष्ट योग्यता बनती है। मुमुक्षु तो मुमुक्षु है, लेकिन जघन्य योग्यता वाले भी होते हैं, मध्यम योग्यता वाले भी होते हैं, और उत्कृष्ट योग्यता वाले भी होते हैं। यहाँ उत्कृष्ट योग्यता में आता है। देखो क्यों? मानने के कारण से, मानने के कारण से नहीं, परमेश्वर पद को देखने से कारण से। और अन्य तत्व में वो तो अन्य द्रव्य है ना, जो कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझाने के तो चित्ता की संप्राप्ति होती है, उसकी मलिनता का नाश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। इतना बड़ा रहस्य इसके पीछे छिपा है। इसलिए आचार्य ऊपर के गुणस्थान में बैठे हैं, फिर भी नीचे के गुणस्थान वाले की इतनी महिमा करती है। करते हैं क्यों? जीव शासनम सब्वम, ये कुंकुम स्वामी ने कहा, जो अनुभूति ज्ञानानुभूति है यही आत्मानुभूति है। ज्ञान का वेदन वही आत्मा का वेदन है और वही समस्त जीव शासन है। अज्ञानी लोग कितने भी धमाधम करे, गजरथ निकाले, वो करे, कहीं भी जीव शासन नहीं है। जीवंत जीव शासन तो ज्ञानी स्वयं ही है और ये समस्त है, अधूरा नहीं है, खंडित नहीं है, अल्प नहीं है, पूरा का पूरा है, समस्त है, इस मतलब पूरा है। तो बहुत बड़ा फायदा इस तरह से होता है और दूसरी तरह से नहीं होता है, इसलिए ये बात कही कि मुमुक्षु की भूमिका में निर्मलता आए बिना अपने निर्मल स्वरूप को देखेगा कैसे? क्या मैला ज्ञान निर्मल स्वरूप को देख सकता है? मैली बुद्धि, ज्ञान मैंने मैली बुद्धि है, ज्ञान तो किस कहां से कहे उसको, उसको तो ज्ञान कहना भी अच्छा नहीं लगता है। जिसकी बुद्धि मलिन है उसको तो निर्मल स्वरूप को कैसे विषय करेगी, हो ही नहीं सकेगा। आत्मा जो परिपूर्ण निर्मल स्वरूप है उसको देखने के लिए देखने वाले ज्ञान में भी निर्मलता चाहिए चाहिए और चाहिए। और वो आएगी कहां से? कि इस तरह से आएगी। इसका निर्मलता आने का दूसरा प्रकार भी नहीं है कि ऐसी निर्मलता आ जाए। ये बात उन्होंने अपने ठोस अनुभव से कही है। इस पत्र में जो ये बात रही रखी है कृपालु देव ने, गजब की रखी है। सामान्य बुद्धि वाले को तो, यानी मोटी बुद्धि वाले, स्थूल बुद्धि वाले को तो समझ में ही नहीं आएगी कि ये बात ऐसी कैसे हो सकती है, सतपुरुष को परमेश्वर कैसे माना जाए। हम तो भक्ति करेंगे तोल माप जोख करके करेंगे, हम ना अतिशयोक्ति हो जाएगी तो हमारा अपराध हो जाएगा। ये बुद्धिमानों की बुद्धि ऐसी चलती है। कहते हैं कि ऐसी बुद्धि यहाँ परमार्थ के काम में नहीं आती है। देखो कितना साफ साफ शब्द पड़ा है, सतपुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। ये अनंत ज्ञानियों का अभिमत है और ये जिनेन्द्रों का भी अभिमत है। मत में फिर होता नहीं, जिन मत वही ज्ञानी का मत, ज्ञानी का मत वही जिन मत है, बस। परोक्ष तो तुम प्रत्यक्ष अगर नहीं तुम पहचानते तो परोक्ष को तो पहचानेंगे भी कैसे? जो प्रत्यक्ष को नहीं पहचानते वो परोक्ष को तो पहचानेंगे कैसे? तो 249 वाले पत्र में से लिया था कि स्वस्थिरता का कारण नहीं हो सकता। और यह बुद्धि परम विनय परम दीनता को सूचित करती है। ऐसी परम दीनता आए बिना वर्तमान पर्याय का, कर्मजनित पर्याय का अहम भाव और अविनय छुटेगा नहीं। मैं भी कुछ हूं ये बात कब छूटती है? कि परम विनय आते ही छूटती है। बिना परम विनय ये बात छूटने वाली नहीं है। जिस अभिमान के घोड़े पे चढ़ा है तो परमेश्वर निज परम पद के घोड़े पे चढ़ सकेगा नहीं। पहले तो यहां से तो उतर, फिर तो ये परम पद मैं हूं, ऐसा परमात्मा मैं हूं, ये उस पर सवारी करने का मौका है। लेकिन इस घोड़े पे बैठा है मैं फलाना हूं, मैं भी विद्वान हूं, मैं भी, मेरे में भी ज्ञान है, मैं भी समझता हूं, तो इस घोड़े पे बैठा है
तो मैं परमात्मा हूँ उसके ऊपर सवारी कर सकता नहीं है। पहले तो ज्ञानी उसको उतारते हैं कि तुम इससे तो नीचे उतर जा पहले। ललू जी स्वामी तो त्यागी थे, गृहस्थी नहीं थे, गृहस्थी छोड़ दिया था बाहर से, लेकिन उनको ये 20 पद लिख के दिया है कि इनका स्वाध्याय करना तुम, पर पूरे भाव से, ऐसा नहीं कंठस्थ कर लेना, ऐसा नहीं कि मुंह से तो बोलते जाए और उपयोग कहीं घूमते रहे, ऐसा नहीं। अधमा अधमा अधिको पति सकल जगत में मैं, ये निश्चय आया बिना साधन कुछ होगा नहीं। क्यों? इस घोड़े से उतारने की बात है पहले। जब ही मैं परमात्मा हूं वहां सवारी होने का अवसर आता है, इसके पहले दो घोड़े की सवारी किसी को हो सकती नहीं है, अशक्य है। तो कहते हैं कि इसके पहले परिपूर्ण आज्ञाकारिता होती नहीं, ज्ञानी की आज्ञा में रहता नहीं, वो स्वच्छंद में रहा है, वो कहने की जरूरत नहीं है। और 472 में अभी हमने घर पे पढ़ा, तो चर्चाएं चल रही थी कि जिसने सत्संग आज्ञाकारिता के रूप में उपासना नहीं की सत्संग की, उसको अगर ज्ञानी परमार्थ की बात प्रकट करते हैं तो भी उसको समझ में आती नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आती है, उसका भाव भाषित होता ही नहीं उसको, क्योंकि आज्ञाकारिता से निर्मलता आती है, यही कहने का अभिप्राय है। वहां भी 472 नंबर का पत्र देख लेना, दूसरे पैराग्राफ में वो बात है, पढ़ना है तो पढ़ा देना, थोड़ा 45 मिनट से आगे चलाएंगे थोड़ा बहुत। एक प्रकार ऐसा भी समझने योग्य है कि सत्पुरुष की वाणी भले ही स्पष्ट हो, आत्मस्वरूप को दिखाने के लिए स्पष्ट हो, एकदम स्पष्ट हो, लेकिन इसका परमार्थ, फिर भी इसका परमार्थ, इसका रहस्य सत्पुरुष का सत्संग जिसने आज्ञांकितपणे से नहीं किया हो उसको समझना दुर्लभ है, कठिन है, यानी वो समझ पाएगा नहीं, समझ में बात ही नहीं आएगी। क्या सिद्धांत हुआ? कि जो आज्ञांकित होता है उसको निर्मलता आती है और वही समझने के काबिल होता है, जिसको आज्ञाकारिता नहीं आती वो समझने के लिए अधिकारी नहीं होता, योग्य नहीं होता, भले स्पष्ट बात कही हो उसको समझ में आएगी नहीं, ये सिद्धांत निकलता है। अपना अहम भाव और क्या, जिस घोड़े पे बैठा है उस घोड़े पे बैठा है तो नहीं समझ में आएगा, परम विनय आना चाहिए, ये तो चल रहा है। विनय की कमी क्या प्रतिबंधक है? नहीं मानता है, विरोध करता है, इसकी तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा करने लायक भी नहीं है, क्योंकि उनको तो बेचारे को बहुत बड़ा लंबा संसार है। जो एक ज्ञानी की भी निंदा करता है, विराधना करता है, विरोध करता है, अनंतों की करता है, इसकी तो चर्चा करने लायक भी नहीं है। लेकिन जो भी नहीं करता है, लेकिन पूरा नहीं करता है, अधूरा करता है, समझ इतनी नहीं है, परमेश्वर बुद्धि नहीं आई, तो उनको ये बाधक कारण होता है, परमार्थ समझने में बाधक कारण होता है, भले स्पष्ट शब्द में बात आई हो यानी कि, लेकिन इसका परमार्थ समझने में आएगा नहीं, मलिनता रहती है, निर्मलता नहीं आती है, यही कारण है इसका। हाँ, वो 751 में वही लिया है कि सत्पुरुष की पहचान होने से आत्मपुरुष जैसे आज्ञा रुचि होती है, सचंद निरोध भक्ति होती है, वचन की प्रतीति आती है, जैसा भी कहा परम सत्य है, रात को दिन कहा, दिन को रात कहा तो भी परम सत्य है, इसके पीछे भी कोई परमार्थ होगा तो कहा होगा, ऐसा विश्वास होता है, प्रतीति होती है, उसको प्रथम संकेत कहते हैं। यानी सम्यक्त्व का बीज वही है। जैसे आम के गुटली में गुटली होती है, वही मूल बीज है, ऐसा वो बीज है। इसके पहले बीज मिलता नहीं है। ये सीधा ही रास्ता है सम्यक दर्शन में जाने का, सीधा रास्ता है। बाकी तो दूसरा कर करके आनंद काल बिता दिया है। इसको छोड़ करके, ठीक इसी बात को छोड़ करके, दूसरा सब कुछ करके अनंत काल बिताया है। यही नहीं किया है, ये बात है। दोपहर तो प्रश्न आया था कि द्रविड़ जी ने क्या नहीं किया, कि ये नहीं किया कि अपने गुरु को, अपने जिनेन्द्र भगवान को या सम्यक दृष्टि को भी सम्यक्त्व के रूप में पहचाना नहीं है। सजीव मूर्ति को सम्यक्त्व के रूप में नहीं पहचाना, यही कमी रह गई है। बाकी तो सब कुछ क्या है, द्रविड़ जी में क्या कमी रही, पंचाचार के पालन करने वाले हैं। ये स्वच्छंद है, आज्ञाकारिता तो नहीं है लेकिन स्वच्छंद है। ऐसी बात
परमात्मा हो,
ऐसा कहते हैं। ज्ञानी को परमात्मा माने बिना इसकी ये बात भी आप मानोगे कैसे, ये तो बताओ। ज्ञानी कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, ऐसे ज्ञानी की बात कैसे माने, इसको परमात्मा माने बिना माने क्या, माने कैसे माने बताइए। माने ही नहीं है, ये उल्टी हो जाती। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। इस पत्र का पूरा केंद्र स्थान यही जगह पे है और ये मुमुक्षु की भूमिका का मुख्य अंश है। अगर ये बात नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। जब जितनी भी मुमुक्षुता के योग्य क्रिया है तो फालतू की क्रिया कांड है और कुछ नहीं, आडंबर है और कुछ नहीं है, ऐसा समझ लें। ज्ञानी जिसको जाना है तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मानना ज्ञानी को, ज्ञानी विचार करके पहचानना विचार करके, लेकिन फिर बार बार फिर देव दापन करने की जरूरत नहीं है। या तो मानो या तो नहीं मानो, मानना भी है और नहीं मानना भी है, वो बात बराबर नहीं है। ये तो गड़बड़ वाली बात है कि एक बात तो मानते हैं दूसरे नहीं मानेंगे, या 99 मानेंगे एक नहीं मानेंगे, वो 99 को भी नहीं मानता है, ऐसी बात है क्या। उसमें परसेंटेज नहीं निकाला जाता, पागल होता है ना पागल, तो पूरा पागल नहीं नहीं होता है। अब देखिए हमारे बहन बेटी के हम संबंध करने के लिए किसी लड़के को देखने को जाते हैं, पूरा पागल नहीं हो, कुछ अंश में पागल हो सकता है, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें कोई वो बात उत्पतांग बोल देता है थोड़े से पागल पल के पागलपन के वशात, तो हमारी नजर में वो बात आती है। हमने 100 बात पूछी, 99 तो राइट निकली, लेकिन एक पागलपन वाली निकली। हम परसेंटेज लगाएंगे कि चलो 1% में बाधा नहीं है, संबंध कर दो इसके साथ, करेंगे कोई, हाँ कोई संबंध करेगा नहीं। ऐसे 99 बात मानने वाले और 1 बात नहीं मानने वाले पागल ही है और कुछ नहीं है, ऐसी बात है। इन्हें माना ही नहीं, कठिन थोड़ी लगेगी लेकिन है सत्य, हकीकत ऐसी है। वो तो बहुत दुखदायक होता है, सत्य भी कभी बहुत दुखदायक होता है। एक अंग्रेज लेखक का ग्रंथ पढ़ा था, वो अमेरिकन वाला का, इट इज वेरी पेनफुल टू फेस द ट्रुथ। सत्य को फेस करना वो दुखदायक होता है, पेनफुल होता है, चुभता है, ये कैसे होता है, लेकिन है ऐसा। 99 माने 1 नहीं माने, वो एक एक को भी नहीं मानता है, 99 में से भी एक को नहीं मानता है, ऐसा यहाँ सिद्ध होता है, ऐसी बात है।
पूरा सौ को नहीं मानता है, उससे तो अच्छा है, निर्णय मानता है।
लेकिन वो सौ का सौ वही नहीं मानता है, लेकिन वो पूरा सौ को नहीं मानता है, वो तो धोखे में नहीं रहेगा, लेकिन ये धोखे में रह जाएगा कि मैं तो निर्णय में तो मानता हूँ। ये आपत्ति नहीं है, ये बड़ी आपत्ति है, ये धोखे में रहने वाला है। हाँ वो सुलझेगा, वो सुलझेगा नहीं, सो वाला सुलझेगा, 99 वाला सुलझेगा नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात है। हाँ प्रत्यक्ष छे तो किया था भी नहीं, जब प्रत्यक्ष छे गुरुदेव तो इतना भी नहीं किया था, पर अभी उनकी बात का इतना भी नहीं होता है क्या, कि एक मानते दो नहीं मानते, दो मानते एक नहीं मानते, ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या हो रहा है जी? ये हो ही रहा है, वो कहते हैं कि ऐसे परम दीन को ये सूचित करता है, और ऐसी परम दीनता आने से, जिससे मैंने आने से सर्व प्राणियों के प्रति अपना दासत्व माना जाता है। देखो साइड बाय साइड क्या हो गया, किसी प्राणी के प्रति उनको घृणा, वैमनस्य वैरवृत्ति या तिरस्कार वृत्ति आती नहीं है, पर नहीं किसका क्या कारण है, दासत्व आता है, चेक करने के लिए बात है कि परमेश्वर बुद्धि हुई तो साथ साथ में वो हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक कर लेना। और यही परम योग्यता की प्राप्ति है, माने यही उत्कृष्ट मुमुक्षुता की प्राप्ति है, पात्रता की प्राप्ति है, यही उत्कृष्ट पात्रता आगे जाकर के ज्ञान दशा में परिवर्तित हो जाएगी। प्रकार से वो है कि उसने ज्ञानी में परमेश्वर देखा ना, तो ज्ञानी भी एक आत्मा है और जगत के प्राणी भी आत्मा ही तो है, तो जब इसका दासत्व है तो इसका क्यों नहीं, उसको पर्याय गौण हो जाती। देखो द्रव दृष्टि का अंकुर इधर पड़ा है, ज्ञानी के दर्शन में पहचान में द्रव दृष्टि का नींव है, बीज वहां पड़ा है, तो पर्याय को गौण करेगा, सारे जगत के प्राणियों के पर्यायों को ये गौण कर देगा, इसको दोष को नहीं देखेगा, उसके आत्मा को देखेगा और दोष उसका गौण हो जाएगा, चाहे वो शिरच्छेद करने वाला सामने क्यों नहीं आया हो, क्या वो आत्मा देखेगा उसको। और ये बहुत कठिन बात है, वर्तमान अवस्था को गौण करके उसकी आत्मा को मुख्य करके दासत्व को स्वीकार करना, इस सत्पुरुष की पहचान बिना कभी होता नहीं, पर नहीं होता तो इस प्रकार के दोष छूटते भी नहीं,
मालिक को खत्म हो जाता है, मालिक को खत्म होता है,
ये बात ही खत्म हो जाती है कि ये तो वर्तमान में अपने आप को भूला है, स्वरूप को भूला है, तब तो होता है, तो एक समय की भूल है, लेकिन है तो आत्मा, आत्मा को मुख्य करे या इसके एक दूषित अंश को मुख्य करे, किसको मुख्य करे, तो सीधी साधी बात, ऐसी परम दीनता जब तक पैदा नहीं होती, आवृत नहीं है, तब तक जीव की योग्यता प्रतिबंध युक्त होती है, वो मोक्ष मार्ग में आने वाला नहीं, उसको रुकावट है वहां, उसको वहां रुकावट है। नहीं सतपुरुष का मतलब यहां ज्ञानी की बात है, ज्ञानी की बात है, अपने आत्मा में तो आत्मा में परमेश्वर रूप है ही, तो ये तो पदार्थ निर्णय वाली बात तो तीसरा पद में आती है, पदार्थ मैंने जीव पदार्थ, इसका निर्णय मैंने परमेश्वर स्वरूप है ऐसा निश्चय, शिवपद स्वरूप है ऐसा निश्चय, वो बात तो बाद में ले रहे हैं, इसलिए ये बात यहां लागू नहीं होती है, ऐसी बात है।